بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، देखो माशाल्लाह मुजाहदा पर बात चल रही थी। मुजाहदा किसको कहते हैं? और हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नफ्स लज्जत का आदी है, बस उसको अगर गुनाहों की लज्जत दोगे तो गुनाहों में रहेगा, और अगर इबादत की लज्जत दूंगे तो इबादत में रहेगा। उसको तो लज्जत चाहिए, इस पर बात चल रही। फरमाए देखो नफ्स को कुचलने में मजा आएगा। नफ्स को कुचलना जब थोड़ी मुजाहदा करेंगे, ये मुजाहदा शुरू में तो बड़ा मुश्किल लगता है कि बड़ा कठिन सबक दिया जा रहा है कि अपने नफ्स की मुखालिफत करो, अपने नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ वर्जी करो। नफ्स तो चाह रहा है कि गीबत करूं, मजलिस में गीबत करने का मौजू छिड़ गया। अब जी चाह रहा है कि उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। अब उस वक्त उसको लगाम देना कि नहीं ये काम मत करो, ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। लेकिन याद रखिए कि दूर दूर से मुश्किल नजर आता है। जब आदमी ने ये पुख्ता इरादा कर लिया कि ये काम नहीं करूंगा, तो उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत से, फजलो करम से मदद भी होगी, और फिर तुमने उस आरजू और ख्वाहिश को जो कुचला है, उस कुचलने में जो मजा आएगा इंशाअल्लाह, तुम इंशाअल्लाह उसकी हलावत इस गीबत की लज्जत से कहीं ज्यादा। ये था ईमान की हलावत हासिल करो, कहते हैं हलावत यानी टेस्ट, मिठास। ईमान की हलावत हासिल करो। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स के दिल में तकाजा पैदा हुआ कि निगाह गलत जगह पर डालू। और कौन शख्स है जिसके दिल में तकाजा नहीं होता? कौन शख्स है जिसके दिल में ये तकाजा नहीं होता? अब दिल बड़ा कसम कसमसा रहा है, मुजबजब है कि उसको देख ही लूं, लेकिन आपने अल्लाह के डर और खशियत के ख्याल से नजर को बचा लिया और निगाह नहीं डाली। बड़ी तकलीफ हुई, दिल पर आरे चल गए, लेकिन उसी तकलीफ के बदले में अल्लाह ताला ईमान की ऐसी हलावत अता फरमाएंगे कि उसके आगे देखने की लज्जत हेच है, बेकार है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है और हदीस में मौजूद है। जी, ये वादा सिर्फ निगाह के गुनाह के साथ मखसूस नहीं, बल्कि हर गुनाह छोड़ने पर यह वादा है। मसलन गीबत में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन एक मरतबा आपने अल्लाह जल्ल जलालहू के ख्याल से गीबत छोड़ दी और गिबत करते करते रुक गए। अल्लाह के डर के ख्याल से गिबत का कलमा जबान पर आते आते रुक गया। फिर देखो कैसी लज्जत हासिल होती है। जी, फिर देखो कैसी लज्जत हासिल होती है। और जब इंसान गुनाहों की लज्जतों के मुकाबले में इस लज्जत का आदी होता चला जाता है, तो फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसके साथ ताल्लुक मजबूत से मजबूत होता चला जाता है। तो हजरत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने अच्छी बात इरशाद फरमाई, क्या याद रखने के लायक है। फरमाया वो जरा सी बात जो हासिल है तसव्वुफ का, तसव्वुफ का खुलासा क्या है? ये है कि जब किसी इताअत के करने में सुस्ती पैदा हो, जब किसी हुक्म के पूरा करने में सुस्ती पैदा हो, मसलन नमाज का वक्त हो गया लेकिन नमाज को जाने में सुस्ती हो रही है, उस सुस्ती का मुकाबला करके उस ताअत को करे, ये तसव्वुफ का खुलासा। और साथ में ये तो इताअत में, और जब गुनाह से बचने में दिल सुस्ती करे तो सुस्ती का मुकाबला करके उस गुनाह से बचे। फिर फरमाया कि बस इसी से ताल्लुक माल्ला पैदा होता है, यही तसव्वुफ का खुलासा है, इसी से ताल्लुक माल्ला पैदा होता है। देखो हजरत ने फरमाई ताल्लुक माल्ला किस चीज में बताया, फरमाया जो ताअत करने से सुस्ती आ रही है उसको पूरा करना, और जो गुनाह करने में चुस्ती आ रही है उसमें सुस्ती करना। चुस्ती आ रही है उसमें गुनाह करने में मजा आ रहा है, फरमा उसमें सुस्ती करो, उसका मुकाबला करके गुनाह से बचो। फिर फरमाए कि बस इसी से ताल्लुक माल्ला हो जाता, यानी पूरे दिन का खुलासा बता दिया। पूरे दिन का खुलासा यही है, क्योंकि कई बार बता चुका हूं पूरी शरीयत दो अहकाम है, पूरी शरीयत में करने के काम और बचने के काम, पूरी शरीयत में पूरा कुरान और हदीस को देखो तो उसमें दो चीजें मिलेगी, कुछ करने के काम कुछ बचने के काम। करने के काम करना तो हमने शुरू कर दिया, आज हमारा दिन अधूरा क्यों है, लेकिन बचने के काम से बचे नहीं, बस थोड़े बहुत जो दीनदार है वो करने वाले काम पर आ गए, बचने वाले काम से बचे नहीं। तो फरमाया करने वाले काम भी करना है और बचने वाले काम से भी बचना है, दोनों फराइज है। तो फरमाया अल्लाह का ताल्लुक मिल गया, तसव्वुफ आ गया, इसलिए करने वाले कामों में तबीयत चलती है, बचने वाले कामों में डॉक्टर की जरूरत पड़ती है कि दवाई खानी पड़ेगी, उसमें तबीयत नहीं चलती, क्योंकि तबीयत और फितरत बनी हुई है गुनाहों का आदि है। इसलिए ताअत पर आ जाता है फिर भी गुनाह से नहीं बचता। अगर अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने वाला बन भी गया है, मसलन नमाज रोजा और इस तरीके से हज जकात, तो लेकिन गुनाहों से नहीं बच रहा है, करने वाले काम पर आने के बाद भी गुनाहों से नहीं बच रहा है, तो गुनाहों से बचना भी उतना ही जरूरी है जितना नमाज पढ़ना जरूरी है। इसी से ताल्लुक माल्ला में तरक्की होती है, और जिस शख्स को ये बात हासिल हो जाए उसको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं, जी उसको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। लिहाजा नफसानी ख्वाहिशात पर आरे चला चला कर, हथौड़े मार मार कर जब उसको कुचल दिया, तो अब वो नफ्स कुचलने के नतीजे में अल्लाह जल्ल जलालुहु की तजल्ली गाह बन गया। हमारा दिल जो है फिर अल्लाह की तजल्ली की जगह बनाना है, तो पहले नफ्स को कुचलो, तो तजल्ली यानी अल्लाह की रहमत की जगह बन जाएगी, वो नूर आएगा। आज हमारे दिल में कैसे नूर आएगा, दिल भरा हुआ है जुल्मतों से, दुनिया की मोहब्बतों से, तो जब दुनिया की मोहब्बतें निकलेगी मुजाहदे से तो अल्लाह की मोहब्बत खुद ब खुद आ जाएगी। तो खुलासा क्या हुआ कि जो मोहब्बत दिल में भरी हुई है उसको निकालने के लिए मुजाहदा करना है, अल्लाह की मोहब्बत को लाने के लिए ये निकल जाएगी तो अल्लाह की मोहब्बत खुद ब खुद आ जाएगी। एक बर्तन में एक चीज रहेगी, एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, अब आपको दूध डालना है तो क्या करोगे, पहले पानी खाली करो तो दूध भर लो, लेकिन ऐसे ही इस दिल के अंदर चीजों की मोहब्बतें भरी हुई है तो अल्लाह की मोहब्बत कैसे आएगी, तो चीजों की मोहब्बत के निकालने में मुजाहदा है, अल्लाह की मोहब्बत तो फिर खुद ब खुद आ जाएगी जी। इसलिए चीजों की मोहब्बत निकलेगी नहीं जब तक के मुजाहदा नहीं होगा जी। दिल तो है टूटने के लिए, हमारे वालिद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल दिया करते थे। अब वो तो जमाना चला गया, पहले जमाने में यूनानी हकीम हुआ करते, वो कुश्ता बनाया करते थे, कुश्ता कुश्ता यानी एक पाउडर बनाते हैं जो जवाहिरात से बनाते हैं, उसको कूट कूट कर ताकत की दवाई होती है, कुश्ता एक टॉनिक होती है यूनानी में, सोने का कुश्ता, चांदी का कुश्ता, संख्या का कुश्ता, न जाने क्या क्या कुश्ते तैयार करते थे, उसे बड़ी मेहनत लगती है और ये एक एक कितना खाना पड़ता है, राई के दाने, एक जर्रा जर्रा खाना होता है इसमें से, बस ये 1 ग्राम ही कई हजारों का मिलता है, सोने का, फिर चांदी का उससे सस्ता, फिर जैसी आइटम। तो क्या क्या कुश्ते तैयार करते, और कुश्ता बनाने के लिए वो सोने को जलाते थे, और इतना जलाते थे कि वो सोना राख बन जाता था, कितनी हीटिंग देनी पड़ती है, वो राख बन जाता। और कहते थे कि सोने को जितना ज्यादा जलाया जाएगा उतनी ही उसकी ताकत में इजाफा होगा, उतनी ही उतनी ताकत में इजाफा होगा। अब जला जला कर जब कुश्ता तैयार किया तो तीला तैयार हो गए, तीला, कोई उसको जरा सा खा ले, जरा सा खा ले तो पता नहीं कहां की कुव्वत आ जाएगी, ऐसा कुश्ता तैयार हो गया। तो जब सोने को जला जला कर मिटा मिटा कर उसको पामाल करके राख बना दिया तो अभी कुश्ता तैयार हो गया। तो हमारे हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इन ख्वाहिशात नफ्स को, नफ्स की ख्वाहिशात को जब कुचलोंगे कुचलोंगे कुचलोंगे, कुचल कुचल कर पीस पीस कर राख बनाकर फना कर दोगे, फना कर दो, तब ये कुश्ता बन जाएगा, तब ये कुश्ता बन जाएगा। अल्लाह, कितना पीसना पड़ेगा, कितना जलील होना पड़ेगा, तब ये कुश्ता बन जाएगा। अल्लाह, उसमें फिर अल्लाह जल्ले जलालू के साथ ताल्लुक की कुव्वत आ जाएगी, अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत आ जाएगी। देखो है ना, कहते फिर ताल्लुक की कुव्वत भी आ गई, मोहब्बत भी आ गई, अब दिल अल्लाह की तजल्ली गाह भी बन जाएगा। इस दिल को जितना तोड़ोगे उतना ही अल्लाह ताला की निगाह में महबूब बनेगा। ये दिल अजीब है, जितना तोड़ोगे उतना महबूब बनेगा। तू बचा बचा के न रख उसे, तू बचा बचा के न रख इसे कि ये आईना है वो आईना, तू बचा बचा के न रख इसे कि ये आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। यानी दिल बचा बचा, दिल को तो हम बचा बचा कर रखते, मेरा दिल टूटे नहीं, मेरा दिल टूटे नहीं, ऐसे काम नहीं करूं, ऐसा जाऊं नहीं, ऐसा युग ना करूं, दिल ना टूटे। तो शायर कहे तो बचा बचा के न रख इसे के दिल को आईने से मिसाल दे कि ये आईना है वो आईना। एक तो मिरर होता है ना, मिरर, उसको भी आईना कहते हैं। फरमाया मिरर तो जितना टूटा हुआ है इसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन दिल भी एक मिरर है, एक आईना है, ये जितना टूटा हुआ है इतना कीमती है, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। यानी जिसने ये आईना बनाया है, अल्लाह, अल्लाह ने बनाया हमारे दिल को, तो फरमाया ये दिल को जितना तोड़ोगे इतना अल्लाह क्या महबूब है। दुनिया के आईना टूट जाए तो उसकी कीमत खत्म, और दिल को जितना टूटेगा उतना कीमती, जितना टूटेगा उतना कीमती, चूर चूर हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े तो इतना ज्यादा कीमती। अल्लाह अकबर। तो इसलिए कभी कभी अल्लाह ताला इंसान के दिलों को तोड़ते हैं, बेचारा फिर रोता है, टूट टूट जाता है दिल का, दिल टूट गया, फिर अल्लाह उसको कीमती बनाते हैं। इसलिए दिल टूटे तो कभी घबराओ मत, बस दीन वालों से, जानने वालों से, अल्लाह वालों से ताल्लुक पैदा करो, उनको बता दो कि ऐसा हो गया, वो तसल्ली देंगे, वरना इंसान का नफ्स उसको धोखा देगा, देख तेरी क्या इज्जत है, देख तेरा दिल कैसा टूट गया, कैसा तोड़ दिया। तो वो तो घबराने की बात करेगा और अल्लाह वाले उनको तसल्ली देंगे, बोले ये तो तुम अब कीमती बने, ये तो अल्लाह ने तोड़ा है, तुम उस पर जितनी चोटें लगाओगे ना उतना ही ये बनाने वाले की निगाह में महबूब होगा। इसलिए कभी कभी अल्लाह ताला हमारे दुश्मन को लगा देते हैं, क्या बोले इसके बारे में, खूब बोलो, अब दिल टूटेगा, जाहिर बात है दिल टूटेगा। अब वो बोलता तो यूं समझो कि बस ये जो तोड़ रहा है ना, यानी अल्लाह को जरा मजा आ रहा है मेरे तोड़ने, तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, क्यों उसके जवाब देने में पड़ते हैं, लगते हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जो आ जाओ, हो जाओ, इसलिए कि उसने इस दिल को तोड़ने के लिए इसको हथौड़ा बनाया है। इसलिए हमेशा अल्लाह वालों के दुश्मन ज्यादा होते हैं, दोस्त कम होते हैं। जी, इसलिए अल्लाह वालों की नजर किसी पर होती नहीं, अल्लाह पर होती है। तुम दोस्त बनो, तुम दुश्मन बनो, हमें उससे कुछ नहीं। हम तो जमीन पर रहते हुए अब आसमानों पर हैं, अल्लाह से बातें करते हैं। तो फरमाया, उतना ही ये बनाने वाले की निगाह में महबूब होगा। बनाने वाले ने उसको उसी लिए बनाया है कि उसे तोड़ा जाए और उसकी खातिर उसकी ख्वाहिशत को कुचला जाए, और जब वो कुचल जाता है ना, तो क्या से क्या बन जाता है। हमारे हजरत डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या अच्छा शेर पढ़ा करते थे, एक कह के कासए साज ने प्याला पटक दिया, अब और कुछ बनाएंगे उसको बिगाड़ के। ये कह के कासए साज ने प्याला पटक दिया, यानी प्याले बनाने वाले ने प्याला फेंक कर तोड़ दिया, पटक दिया, और फिर क्या कहने लगे, अब और कुछ बनाएंगे इसको बिगाड़ के, इसको तोड़ के हम और कुछ बनाएंगे। भाई दिल किसने बनाया, उसी ने बनाया और उसी ने तोड़ दिया, कहा अब इसको तोड़ के हम और कुछ बनाएंगे, अब और कुछ बनाएंगे उसको बिगाड़ के। अरे मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा था कि नहीं था, उसको तोड़ के पटक दिया, बोले फेंको, तोड़ के क्या बना दिया, तोड़ के अजदहा बना दिया। हाँ, तो ये है, क्या क्या हुआ, अब हमने जो तुमसे तुड़वाया है वो कुछ और बनाने के लिए, फरमाया अब पकड़ लो, फिर कुछ और बन गया, तो डंडा हो गया, लेकिन अब वो डंडा कुछ और बन गया, पहले कुछ और था, अब कुछ और है। ऐसे ही दिल को, अच्छा खासा दिल है, अल्लाह तोड़ते हैं, तोड़ के कुछ और बनाते, क्या हुआ कि अब इस दिल में मोहब्बत आ गई अल्लाह की, पहले चीजों की मोहब्बत थी, अब अल्लाह की मोहब्बत आ गई, पहले मखलूक से ताल्लुक था, अब अल्लाह से ताल्लुक हो गया, पहले लोगों से मांगते थे, अब अल्लाह से मांगते हैं, तो ये हो गया ना तोड़ के। और कुछ बनाएंगे, यानी वो जो चाहेंगे वो बनाएंगे, लिहाजा ये ना समझो कि ख्वाहिशात नफ्स को कुचलने से जो चोटें लग रही है, जो तकलीफ हो रही है, वो बेकार जा रही है, बल्कि उसके बाद जब ये दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत का महल बनेगा और अल्लाह ताला के जिक्र उसकी याद का महल बनेगा, उस वक्त उसको जो हलावत नसीब होगी, खुदा की कसम, उसके मुकाबले में गुनाहों की सारी लज्जतें खाक दर खाक है। हे, इस गुनाह में फिर क्या टेस है, कोई मजा नहीं, कोई मजा नहीं। जी, उनकी कोई हकीकत नहीं। अल्लाह ताला ये दौलत हम सबको नसीब फरमाए। बस शुरू में थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत उठानी पड़ेगी, और उसी का नाम मुजाहदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी बात को हदीस शरीफ में इस तरह बयान फरमाया, अल मुजाहिद मन जाहद नफ्सहु, मुजाहिद दर हकीकत वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करे, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को अल्लाह की खातिर कुचले। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नफ्स की ख्वाहिशात के हाथों में खिलौना बनने से बचाए, और इन ख्वाहिशात नफ्स को काबू करने की तौफीक अता फरमाए। जी, अब हजरत फरमाते हैं, हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत वाला ने इरशाद फरमाया, फरमाया मुजाहदा की हकीकत यह है कि गुनाहों को तो मुतलकन तर्क करे, छोड़ दे, और ये नफ्स की मुखालिफत वाजिब है। गुनाहों को मुतलकन छोड़ दे और ये नफ्स की मुखालिफत तो वाजिब है, और मुबाहात में तकलीलन मुखालिफत करे, ये मुखालिफत मुस्तहब है, और जायज चीजों में थोड़ा कम कर दे और ये मुखालिफत ये मुस्तहब है। इस मलफूज में हजरत वाला ने مجاہدہ کی حقیقت بیان فرما دی، وہ ہے نفس کے تقاضوں کی مخالفت کرنا. یہ مخالفت بعض حالات میں واجب ہوتی ہے، مثلا اگر نفس کسی گناہ کی طرف بلا رہا ہے، کسی گناہ کی طرف بلا رہا ہے اور کسی گناہ کا تقاضا پیدا کر رہا ہے، تو اس تقاضے کی مخالفت کر کے اس کو کچلنا اور مجاہدہ کرنا واجب ہے، یاد رکھو واجب، اور واجب کے چھٹنے پر گناہ ہوتا ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اصل مجاہدہ یہی ہے. آج بتاؤ ہم سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. جائز کاموں سے رکنا بھی مجاہدہ ہے، لیکن چونکہ ہمارا نفس لذتوں کا، خواہشات کا، راحتوں کا عادی ہو چکا ہے، راحتوں کا عادی ہو چکا ہے، اور اتنا زیادہ عادی ہو چکا ہے کہ اگر اس کو اللہ کے راستے کی طرف اور شریعت کی طرف موڑنا چاہے تو آسانی سے نہیں مڑتا، بلکہ دشواری پیدا ہوتی. اس لیے اس نفس کو نیچا کرنے کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے تابع بنانے کے لیے، اس کو بعض مباح جائز کاموں سے بھی روکنا پڑتا ہے. اس لیے کہ جب نفس کو جائز کاموں سے روکیں گے تو پھر اس کو لذتوں کو چھوڑنے کی عادت پڑے گی. مجاہدہ ہوگا نا تو لذتوں کے چھوڑنے کی عادت پڑے گی، اور پھر اس کے لیے ناجائز امور سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اس کو بھی مجاہدہ کہا جاتا ہے. یہ مجاہدہ مستحب ہے. مثلا خوب پیٹ بھر کر کھانا، خوب پیٹ بھر کر کھانا کوئی گناہ کا کام نہیں، لیکن صوفیاء کرام فرماتے کہ خوب پیٹ بھر کر مت کھاؤ، اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نفس غافل ہو جائے گا اور لذتوں کا عادت ہو جائے گی. اس لیے نفس کو عادی بنانے کے لیے کھانے میں تھوڑی سی کمی کر دو، یہ بھی مجاہدہ ہے. ارے ڈائٹ کرتے ہیں نا تو اس میں کمی کرتے ہیں اور نفس کے خلاف چلتے ہیں، تو پھر یہ بھی تو ڈائٹ ہے نا. کیا بھائی آج کل ہم ڈائٹ ہے؟ کون سی ڈائٹ؟ گناہوں سے بچنے کی ڈائٹ. ہاں نفس کی ڈائٹ ہے، وہ تو جسم کی ڈائٹ تھی، نفس کی ڈائٹ. اور نفس کی ڈائٹ کا فارمولا ہمارے پاس ہے، وہ تو کوئی مانگتا نہیں، اور جسم کی ڈائٹ مانگ رہے ہیں. حالانکہ اس میں بھی مجاہدہ ہی کر رہے ہیں، اس سے جسم کو فائدہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، اور اس میں بھی مجاہدہ. تو مجاہدے تو عادت ہے، لیکن اس کا مجاہدہ کرنے سے ذرا لوگوں میں خوبصورت لگو، اور نفس کا مجاہدہ کرنے سے اللہ کو خوبصورت لگوں. تو بتاؤ کس کے سامنے خوبصورت بننا ہے؟ اب یہ تو آپ چوائس کروں گے. اللہ کو خوبصورت لگے یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن کیا کرے، آج ہمارے اندر اسی سے پتا چلتا ہے کہ دنیا کی محبت اتنی ہے کہ دنیا والوں کے نزدیک کیسے خوبصورت بنوں. تو پھر اس کی بھی ڈائٹ شروع کر دو. اگر اللہ کے سامنے خوبصورت بننا ہے اور محبوب بننا ہے تو پھر اس کی ڈائٹ شروع کر دو نفس کی. نا یہ دھوکا ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اچھا اللہ، مولانا یعقوب محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ صوفیاء کرام بعض جائز کاموں سے بھی روک دیتے ہیں؟ مولانا محمد یعقوب صاحب تو ان کو چھڑا دیتے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو جائز قرار دیا ہے. حضرت والا نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو اس کی مثال یہ ہے کہ کتاب کا ورق ہے، اس ورق کو موڑو. موڑ دیا، اچھا اس کو سیدھا کرو. ہاں اب وہ ورق سیدھا نہیں ہوتا، بہت کوشش کر لی لیکن وہ دوبارہ مڑ جاتا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ورق کو مخالف سمت میں موڑ دو، یہ سیدھا ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ نفس کا کاغذ بھی گناہوں کی طرف مڑا ہوا ہے، نفس کا کاغذ بھی گناہوں کی طرف مڑا ہوا ہے، معصیتوں کی طرف مڑا ہوا ہے، अब अगर उसको सीधा करना चाहोगे तो सीधा नहीं होगा, उसको दूसरी तरफ मोड़ दो, थोड़े से जायज कामों को भी छुड़ा दो, जिसके नतीजे में बिल्कुल सीधा हो जाएगा और रास्ते पर आ जाएगा, ये भी मुजाहदा है। चार मुजाहदात आम तौर पर सूफियाई किराम कराते हैं, खास करके चिश्तिया सिलसिले में। सलासिल है ना चार, अल्लाह तक पहुंचाने के और अपनी इस्लाह के चार तरीके हैं, एक चिश्तिया, एक नक्शबंदिया, कादरिया, सहरवर्दिया। तो इसमें चिश्तिया सिलसिले में आम तौर पर चार मुजाहदात कराए, अभी तो नहीं रहे, पहले थे, आम बहुत थे। सूफियाए किराम यहां चार चीजों का मुजाहदा कराना मशहूर है। एक तकलील ताआम, कम खाना, तकलील कलाम, कम बोलना, तकलील मनाम, कम सोना, और तकलील इख्तिलात माल अनाम, लोगों से कम मिलना। कम खाना, कम बोलना, कम सोना, कम मिलना, ये मुजाहदा। और आज हमारी हर चीज में जाती है, खाने भी माशाल्लाह चार टाइम तो जरूरी होता है और बाकी नफल होते नहीं। कम बोलना और माशाल्लाह बोलने बैठ जाओ तो घंटों निकल जाते हैं, और कम सोना और कम लोगों से मिलना। जी तो सुनो, अब कम खाना, अब हर एक की तफसील आएगी। कम खाना, पहले जमाने में सूफियाए किराम कम खाने पर बड़े बड़े मुजाहदा कराए करते, यहां तक के फाका कशी तक नौबत आ जाती, फाका तक कराते। लेकिन हकीम उल उम्मत मौलाना शेख अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये जमाना अब इस किस्म के मुजाहिदों का नहीं। अब तो लोग वैसे ही कमजोर है, अगर खाना कम कर देंगे तो और बीमारियां आ जाएगी। उसके नतीजे में कहीं ऐसा ना हो कि पहले जो इबादत करता था उससे भी महरूम हो जाए। इसलिए फरमाया कि आज के दौर में इंसान एक बात की पाबंदी कर ले तो फिर तकलील ताम का मकसद हासिल हो जाए। वो ये कि जब खाना खाने बैठे तो खाना खाते वक्त एक मरहला ऐसा आता है कि उस वक्त दिल में ये तरद्दुद पैदा होता है कि अब मजीद खाओ या न खाओ, कुछ और खाओ या न खाओ। बस जिस वक्त ये तरद्दुद का मरहला आए उस वक्त खाना छोड़ दे तो इससे कम खाने का मकसद पूरा हो जाएगा। जी, और ये तरद्दुद जो पैदा होता है कि मजीद खाओ या न खाओ, ये अकल और नफ्स के दरमियान लड़ाई होती, क्योंकि खाना खाने में मजा आ रहा है तो अब नफ्स से तकाजा कर रहा है कि और खाना खाकर मजा ले ले, और अकल का तकाजा ये होता है कि अब मजीद खाना मत खा, अब मजीद खाएगा तो कहीं बीमार न पड़ जाए। तो नफ्स और अकल के दरमियान ये लड़ाई होती है और इस लड़ाई का नाम तरद्दुद है। लिहाजा ऐसे मौका पर नफ्स के तकाजे को छोड़ दो और अकल के तकाजे पर अमल करो। जो आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाते हैं ना, तो कम से कम खाना शुरू करते हैं उसके 15 मिनट के बाद ये अलार्म बजती है। हजरत पीर साहब ने एक उसके उसके बारे में जो बताया, उनका लफ्ज है कि अलार्म बजता है, यानी उसके दिल के अंदर यही आएगा, इसको तरद्दुद इन्होंने कहा है, और वहां पर यह है कि वो चीज आएगी। हाँ, जो जल्दी जल्दी खाएगा तो उसको वो 15-20 मिनट का वक्फा नहीं मिला तो फिर वो हद से ज्यादा खा लेता है, लेकिन जो खाने में 20 मिनट तक लगाते हैं, आराम से खाते हैं, तो उनको खाते खाते फिर वो पॉइंट आता है, क्योंकि वो 15-20 मिनट के बाद उनका वो पेट और वो जो नफ्स उसका एक सिस्टम अल्लाह ने रखी है, वो आराम अलार्म देते हैं, इसी को तरद्दुद कहते हैं। ये मजमून मैंने हजरत वालिद माजिद मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह से कई बार सुना और मवाइज में भी पढ़ा, लेकिन बाद में एक माहिर डॉक्टर का मजमूर नजर आया। एक माहिर डॉक्टर ने भी इस बारे में लिखा है, जिसमें लिखा था कि आजकल लोग अपने बदन का वजन कम करने के लिए तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। किसी ने रोटी छोड़ दी, किसी ने दोपहर का खाना छोड़ दिया, और आजकल की इस्तेलाह में उसको डाइटिंग कहते हैं। यूरोप में उसका बहुत रिवाज है। ये चीज वहां की मुसीबत की तरह, वहां पर मुसीबत की तरह फैली हुई है, वबा मुसीबत की तरह फैली हुई। उसका मकसद ये होता है कि जिस्म का वजन कम हो जाए, और खास तौर पर खवातीन में उसका इतना रिवाज है कि गोलियां खा खा कर वजन कम करने की कोशिश करती है। और बाज औकात उसमें मर भी जाती है। इतना वो पाबंदी से काम करती। उसके बाद वो डॉक्टर लिखता है कि मेरे नजदीक वजन कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आदमी न तो किसी वक्त का खाना मुस्तकिल छोड़े, न रोटी कम करे, बल्कि सारी उम्र उसका मामूल बना ले कि जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाकर खाना बंद कर दे। उसके बाद उस डॉक्टर ने बेआईनी ही ये बात लिखी है कि जिस वक्त खाना खाते हुए ये तरद्दुद हो जाए कि खाना खाओ या न खाओ, उस वक्त खाना छोड़ दे, जो शख्स उस पर अमल करेगा, डॉक्टर ने भी यही लिखा है, उसको कभी बदन बढ़ने की और मैदे के खराब होने की शिकायत नहीं होगी। नहीं होगी। हाँ, और न उसको डाइटिंग करने की जरूरत पेश आएगी। यही बात हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कई साल पहले लिख गए थे। अब चाहो तो वजन कम करने के खातिर इस पर अमल कर लो और चाहो तो अल्लाह को राजी करने के खातिर इस मशवरे पर अमल कर लो। देखो आपको बता दिया, अब नियत चाहे डाइटिंग की करो चाहे अल्लाह को राजी करने की करो, यह अमल करोगे तो इस काम में अजर और सवाब भी मिलेगा और वजन भी तो खुद ब खुद कम हो जाएगा। और अगर सिर्फ वजन कम करने की खातिर करोगे तो शायद वजन तो कम हो जाए लेकिन अजर और सवाब नहीं मिलेगा। तो हम तो कौन है, मेहमान क्या करता, नफा किस में ज्यादा है? तो आप तो कहेंगे बोले चलो डाइटिंग भी करेंगे और अजर भी मिल जाएगा। जी, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो हमारे लिए ये अमल कितना आसान कर दिया। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए इतना आसान कर दिया, वरना पहले जमाने में तो सूफिया किराम खुदा जाने क्या क्या रियाजतें कराया करते। मुजाहदे सूफिया किराम क्या लंगर हुआ करते थे, लंगर, उस लंगर के अंदर शोरबा बनता था। खानकाह में जो मुरीदीन हुआ करते थे ना, उनको ये हुक्म होता था कि जिसके पास एक प्याला शोरबे का आए, देखो क्या था, देखो मुजाहदा देखो जरा क्या था, जो खानकाह में रहते थे उनको खाना मिलता था तो खाने में जिसके पास, एक तो पहले तो पानी वैसे ही ज्यादा होता था, तो फरमाया जिसके पास एक प्याला शोरबा यानी वो सूप आया है तो वो शोरबे में एक प्याला पानी और मिलाए और फिर खावे। आना ऐसी खानकाह में, आ जाओ आ जाओ, बोले सुनकर ही घबरा जाते। जी, तो कहा एक सोर एक प्याला और मिला फिर खाए ताकि नफ्स को लज्जत की आदत से आजाद किया जाए। इसके अलावा उनसे उनसे फाके भी करवाते थे, लेकिन वो जमाना और था और आजकल का जमाना और है, जिसे तिब के अंदर जमाने के बदलने से इलाज के तरीके बदल जाते। इसी तरह हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे जमाने के लिहाज से और हमारे मिजाजों के लिहाज रखते हुए नुस्खे तजवीज कर गए। तकलील ताम का यह नुस्खा हमारे लिए तजवीज कर गए जिससे कम खाने का मंशा हासिल हो जाएगा। जी, पूरा पेट भरकर इस तरह खाना कि पेट का कोई हिस्सा खाली न रहे, अगरचे फिकही एतबार से नाजायज नहीं, हराम नहीं, लेकिन ये इंसान के लिए जिस्मानी और रूहानी दोनों किस्म की बीमारियों का सबब और जरिया है। इसलिए कि जितनी मुसीबतें नाफरमानियां हैं वो सब भरे हुए पेट पर सूझती है। अगर आदमी का पेट भरा हुआ न हो तो ये गुनाह और नाफरमानियां नहीं सूझती। इसलिए हुक्म ये है कि पेट भरे होने से अपने आप को बचाना चाहिए, उसी का नाम है तकलील ताम का मुजाहदा। जी, और एक मुजाहदा है क्या, कम बोलना। एक मुजाहदा कम बोलना है, तकलील कलाम बात कम करना, यानी सुबह से शाम तक ये हमारी जबान कैंची की तरह चल रही, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, जो मुंह में आ रहा है इंसान बोल रहा है। इस सूरत हाल गलत है, इसलिए कि जब तक इंसान इस जबान को लगाम नहीं देगा, उसको काबू नहीं करेगा, उस वक्त तक ये गुनाह करती रहेगी। तो खाने से भी गुनाह होते हैं और जबान से भी गुनाह होते, इसलिए खाने में भी कमी करा दी, जबान में भी, बोलने में भी कमी करा दी। याद रखिए हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को औंधे मुंह जहन्नम में डालने वाली चीज उसकी जबान है। तो देखो जबान, इसलिए कि जब जबान को आजाद छोड़ रखा है, उस पर रोक टोक नहीं है, तो फिर वो जबान झूठ में मुबतला होगी, गीबत में मुबतला होगी, किसी का दिल दुखाने में मुबतला होगी, इन गुनाहों के सबब वो जहन्नम में जाएगा। इसलिए इंसान को कम बोलने का मुजाहदा करना पड़ता है कि बात कम करे, जबान से फजूल बात ना निकाले, जरूरत के मुताबिक बात करे। जैसे पहले बात आ गई, पहले तोलो फिर बोलो, और बोलने से पहले ये सोचे कि बात करना मेरे लिए मुनासिब है या नहीं, कहीं गुनाह की बात तो नहीं। बिला वजह जबान चलाने से बचे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान कम बोलने का आदी हो जाता। फिर ये होता है कि बोलने को दिल चाह रहा है, लेकिन उसने अपनी इस ख्वाहिश को दबा दिया, तो उसके नतीजे में जबान पर काबू पैदा हो जाता है, और फिर वो झूठ, गिबत, इस तरह के दूसरे गुनाहों में मुबतला नहीं होता। चलो बस यहां पर ही रखेंगे, इंशाल्लाह दूसरे तीन मुजाहदा कल बताएंगे। थोड़ी देर मुराकबा कर ले।